नमस्कार भारत, 9 अप्रैल दिन शनिवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में हुई हिंसा पर तनाव अब भी जारी। कल भी छात्रों ने किया प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने मामले को तूल दिए जाने का लगाया आरोप।
ड्रामा बनाया जा रहा है वहाँ पे, उन लड़कों को वहाँ, उन स्टूडेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में कश्मीरी स्टूडेंट को आप, वो बता रहे हैं कि आप भारत माता की जय बोलिए तब जाके आप कॉलेज में एंटर हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश भाजपा के नव नियुक्त अध्यक्ष ने कहा, गंभीर मामले में हो चुके हैं बरी और अन्य मामले हैं राजनीति से प्रेरित।
उस मुकदमे का निर्णय हो चुका, उसमें बरी हूँ, ठीक है। दूसरा, जितने बाकी मुकदमे आप देख रहे हैं वो सारे मुकदमे आंदोलन के।
और लोअर असम में कैसे घुसपैठ बन चुका है एक अहम चुनावी मुद्दा, सुनवाएंगे खास रिपोर्ट। लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अशोक कुमार से। श्रीनगर के एनआईटी संस्थान में कश्मीरी और गैर कश्मीरी छात्रों के बीच हुई हिंसा के 9 दिन बाद भी तनाव जारी है। कल फिर गैर कश्मीरी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कक्षाओं का बहिष्कार किया। पिछले साल नवंबर में हुए पेरिस हमले के बाकी बचे एक अहम संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम के मीडिया का कहना है कि 5 महीने से फरार मोहम्मद अब्रिनी को ब्रसेल्स के अंदर लेख्त इलाके से गिरफ्तार किया गया। 13 नवंबर को पेरिस में कई जगहों पर हमलों में 130 लोग मारे गए थे। बेल्जियम के अधिकारियों का कहना है कि अब्रिनी का संबंध ब्रसेल्स में पिछले महीने हुए हमलों से भी हो सकता है, जिनमें 32 लोग मारे गए थे। बेल्जियम के संघीय अभियोजक एरिक फान डेर शिफ्ट ने कल बताया,
दिस आफ्टरनून मोहम्मद अब्रिनी वाज अरेस्टेड एट प्लासलबेर इन अंडरलेख्त।
आज दोपहर मोहम्मद अब्रिनी को अंडरलेख्त में प्लेस अल्बर्ट से गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। ब्रसेल्स के 2 इलाकों में घरों और हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी से अब्रिनी के उंगलियों के निशान और डीएनए बरामद हुआ है। ये थे बेल्जियम के संघीय अभियोजक एरिक फान डे शिफ्ट के शब्द। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए डिजाइन किए गए एक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने कहा कि ये नई तरह का इंजन है जो अमेरिका पर परमाणु हमला करने की क्षमता को सुनिश्चित करेगा। उत्तर कोरिया ने जनवरी में परमाणु परीक्षण किया था, जबकि फरवरी में उसने एक उपग्रह प्रक्षेपित किया था। उत्तर कोरिया के इन कदमों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी आलोचना हुई और अमरीका ने उसके खिलाफ नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगा दिए थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब का कहना है कि वो लाल सागर पर मिस्र तक एक पुल के निर्माण की योजना बना रहा है। शाह सलमान ने इसे दोनों महाद्वीपों को जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है, जिससे व्यापार को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाने में मदद मिल सकेगी। इस बारे में ज्यादा ब्यौरा तो नहीं दिया गया है, लेकिन पहले के अनुमानों के मुताबिक इस पुल पर $4 अरब तक का खर्च आ सकता है। पता चला है कि सीरिया में लगभग 4 साल से बंधक बनाकर रखे गए एक अमरीकी नागरिक को रूस की मदद से रिहा करा लिया गया है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिक की रिहाई में मदद के लिए रूस का शुक्रिया अदा किया है। रूस का कहना है कि रिहाई के बाद अमरीकी नागरिक को मॉस्को लाया गया है, जहां उसे अमरीकी दूतावास को सौंप दिया जाएगा। और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जूमा के बेटे ने विवादों में रहे प्रभावशाली गुप्ता परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार राजनीतिक हमलों के मद्देनजर उन्होंने ये फैसला किया है। बीबीसी समाचार।
तारीख 9 अप्रैल दिन शनिवार। नमस्कार भारत, में अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। भारत प्रशासित कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT में पिछले कुछ दिनों से चल रहा तनाव बरकरार है। कल भी वहां छात्रों ने प्रदर्शन किया। 31 मार्च को भारत और वेस्टइंडीज के बीच वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में भारत हार गया था। इसके बाद ही छात्रों के 2 गुटों में संघर्ष हुआ था। कल 9वें दिन भी संस्थान में पढ़ रहे गैर कश्मीरी छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। इस बीच भारत के विभिन्न राज्यों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। इधर राज्य की पुलिस बल इस बात से नाराज है कि उनकी देशभक्ति पर संदेह किया जा रहा है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
एनआईटी श्रीनगर में 10 दिन से चल रहे विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भारतीय युवा एक्टिविस्ट्स ने आज एनआईटी चलो का आह्वान किया है और सरकार से कहा है कि शांतिपूर्वक मार्च में बाधा न डाली जाए, लेकिन कश्मीर में सिक्योरिटी को और चुस्त किया गया है। इस बीच कल 90 दिन भी कॉलेज में क्लास वर्क ठप रहा और रुक रुक कर आउटस्टेशन छात्रों ने राज्य की पुलिस और कॉलेज स्टाफ के विरोध में प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। सरकार ने पहले ही 5 अप्रैल को कैंपस में हुए लाठीचार्ज की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिन के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने की घोषणा की है, लेकिन राज्य की खुफिया पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली से इस मुद्दे को कवर करने के लिए आए टीवी संवाददाता इन छात्रों को प्रदर्शन पर उकसाते हैं। इस बीच कल लाल चौक में अपोजिशन अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एनआईटी विवाद पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई कॉलेजों के छात्रों ने हिस्सा लिया।
ड्रामा बनाया जा रहा है, वहाँ पे उन लड़कों को, वहाँ उन स्टूडेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में कश्मीरी स्टूडेंट को आप वो बता रहे हैं कि आप भारत माता की जय बोलिए, तब जाके आप कॉलेज में एंटर हो सकते हैं। ये ड्रामाबाजी कब तक चलेगी? मेवर यूनिवर्सिटी में हमारे 16 स्टूडेंटों को वहाँ पे सस्पेंड किया गया है। भारत के मीडिया को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये बातें क्यों नहीं बोल रहे हैं।
राजस्थान और दूसरे राज्यों के कॉलेजों में कश्मीरी छात्रों की कथित रूप से मारपीट की खबरों से भी घाटी में गुस्सा पाया जाता है। जोधपुर के व्यास डेंटल कॉलेज के कश्मीरी छात्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तो इनके माता पिता सड़कों पर आ गए।
यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे आना चाहते हैं, नॉन लोकल भी जाना चाहते हैं यहाँ क्लास लेने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, क्या फैलाया है, गलत फैलाया है, बदलानी चाहते है। इसीलिए ये वजह है कि 2-3 बच्चे बिल्कुल हो गए, बाकी बिल्कुल ऐसे बाकी चाहते हैं कि क्लास दे, इसका फ्यूचर तबाह हो जाए।
एनआईटी श्रीनगर के छात्रों का कहना है कि कॉलेज को जम्मू शिफ्ट किया जाए क्योंकि इन्हें यहाँ की पुलिस या अध्यापकों पर कोई विश्वास नहीं है। दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में कल छपे समाचार के मुताबिक मानव संसाधन मंत्रालय भारत के 31 एनआईटीज में से 50 वरिष्ठ अध्यापकों को एनआईटी श्रीनगर भेजने के प्रस्ताव पर गंभीरता से गौर कर रहा है। गौरतलब है अलगाववादी नेता सईद अली गिलानी ने पहले ही कश्मीरियों से अपील की है कि बाहर से आए छात्रों के साथ प्रेम के साथ रहें। कल जामा मस्जिद में जुमे के भाषण में एक और नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि एनआईटी में बाहर से आए छात्र कश्मीरियों के अतिथि हैं।
रवैयस खिलाफ सारी परन पुरजोर मुजमावाज।
मीरवाइज का कहना था कि कुछ सांप्रदायिक वर्ग कश्मीर और जम्मू को बांटने की ताकत में हैं। उन्होंने इन षड्यंत्रों से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। इस बीच एनआईटी विवाद पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की चुप्पी पर अपोजिशन नेता उमर अब्दुल्ला और कई दूसरे अपोजिशन गुटों ने इनकी आलोचना की है। उमर अब्दुल्ला ने ताजा ट्वीट में लिखा है कि कश्मीर में एक तरफ पुलिस कर्मियों की देशभक्ति पर संदेह किया जा रहा है और दूसरी तरफ मुठभेड़ में मारे जाने वाले चरमपंथियों के जनाजे में इनके साथी गोलियों की सलामी देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता खालिद जहांगीर ने कहा है कि इनकी पार्टी को चरमपंथ से लड़ने वाली कश्मीर पुलिस पर गर्व है और एनआईटी में छात्रों पर लाठीचार्ज की महज एक घटना की जांच हो रही है। अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद अजीम मुट्टू ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राज्य की गृह मंत्री भी हैं, लेकिन 10 दिन से उन्होंने एनआईटी विवाद के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। गौरतलब है कि 31 मार्च को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की पराजय के बाद आउटस्टेशन छात्रों और स्थानीय विद्यार्थियों के बीच मुठभेड़ से यह विवाद खड़ा हो गया था। कॉलेज में 1,500 से अधिक छात्र दूसरे भारतीय राज्यों से हैं, जबकि कश्मीरियों की संख्या केवल 300 है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या है बीजेपी की कश्मीर नीति? बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही संविधान की धारा 370 पर बहस छेड़ी, पर फिर अधूरी छोड़ दी। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ बीजेपी सत्ता में साझीदार है। श्रीनगर में गैर कश्मीरी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद बीजेपी ने कहा, देश के दूसरे हिस्सों में कश्मीरी छात्रों पर भी हो सकते हैं हमले। कश्मीरी लोगों के दिलो दिमाग को जीतने की कितनी ख्वाहिश है नरेंद्र मोदी सरकार में, इस बार इसी विषय पर बातचीत होगी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहें तो शनिवार 9 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
पठानकोट में हुए चरमपंथी हमले के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने मौलाना मसूद अजहर और 3 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। जिन अन्य लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं उनमें अब्दुल रऊफ, काशिफ जान और शाहिद लतीफ शामिल हैं। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने इस मामले में इस्लामाबाद फोन कर शहजाद मलिक से पूछा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है।
ऑफिशियली तो इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा, और दूसरी बात ये है कि ये इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से जो उनका वारंट गिरफ्तारी दर्ज करना है, ये मुफस्सरीन के मुताबिक, एक्सपर्ट के मुताबिक, तजिया निगारों के मुताबिक ये एक इंडियन जो आवाम है उस पर एक लॉलीपॉप है, इसके इससे ज्यादा इसकी अहमियत बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों में जो इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं वो एडमिसिबल नहीं है। इसीलिए जो मुंबई हमलों से मुतल्लिक जो मुलजमान थे जिनके बारे में इंडियन अथॉरिटीज ने डोजियर भी भेजे थे पाकिस्तान को, लेकिन और उसके बाद पाकिस्तान के जो कुछ ऑफिसर्स वहां पर इंडियन ऑफिसर्स के इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा हिस्सा भी डाला था, कुछ लोगों को बयान भी रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो भी अभी तक पाकिस्तान में अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सका। इसलिए जो मौलाना मसूद अजहर के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं इसकी पाकिस्तानी कानून में और पाकिस्तानी अदालतों में कोई हैसियत नहीं है।
मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ जो तीन लोगों के और नाम शामिल किए गए हैं NIA ने जो वारंट जारी किया है उसमें, तो अब क्या लगता है कि क्या आगे की कार्रवाई अब किस तरह से होगी अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला है? तो
देखें, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने पठानकोट के वाके के बाद यहाँ पर क्रैकडाउन किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, उनके खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन जो इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उस पे जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। आप ग्रोबियर तो भेज सकते हैं लेकिन उन पाकिस्तानी अथॉरिटीज पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक जो इंडियन अथॉरिटीज ने जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं उन अमल रकम नहीं करवा सकती।
तो ऐसे में क्या लगता है, हाल ही में अभी एक दिन पहले ही जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं अब्दुल बासित, उन्होंने भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है फिलहाल निलंबित है, सस्पेंडेड है फिलहाल, और अब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो वारंट इशू किया गया है गिरफ्तारी का ये कोई मायने नहीं रखता है, तो ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते कहाँ जाते हुए दिखते हैं?
देखिए, जो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान जो रिलेशन है वो तो जिस तरह आपने भी कहा कि अभी तक सस्पेंड है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है दोनों मुल्कों के दरमियान, और जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट कम नहीं होगा उस वक्त तक दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। दोनों मुल्कों को इस हवाले से इसमें दोनों जिन पर कोई शकूक व शुबहात है, पाकिस्तान को भी काफी रिजर्वेशंस हैं, इस तरह इंडिया को भी होंगी, जब तक इन रिजर्वेशंस को दूर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते।
ये थे इस्लामाबाद से BBC संवाददाता शहजाद मलिक और उनसे बात कर रही थी सुशीला सिंह। और अब चर्चा उत्तर प्रदेश में नियुक्त भाजपा के नए अध्यक्ष की। लंबी खींचतान और तमाम समीकरणों पर गहन मंथन करने के बाद आखिरकार भाजपा ने उत्तर प्रदेश में नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। लोकसभा सांसद केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी ने नया अध्यक्ष बनाया है। केशव प्रसाद को मौजूदा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये नियुक्ति और अहम मानी जा रही है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने केशव प्रसाद मौर्य से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी।
चुनौती मैं नहीं मानता, इसे मैं जिम्मेदारी मानता और पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के अंदर संगठन का काम सौंपने की सौंपने का निर्णय लिया। दूसरा, मुख्य रूप से जो चुनौती है वह उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस समय तमाम प्रकार की जो जन समस्याएं हैं इसको मैं चुनौती मानता हूं और इस चुनौती को स्वीकार करके हम इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग संघर्ष करेंगे।
मौर्य जी, ये बताएं कि ये कहा जा रहा है और काफी जिस तरह से इतने लंबे समय बाद तय किया गया कि जातीय समीकरण, बैकवर्ड साधना, सवर्ण साधना, इन सब चीज़ों को लेकर के और तब नियुक्ति की गई है, तो इस पे क्या कहना है आपका? आधार क्या है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, थोड़ा हम ये बताएं।
आधार यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, जो समीकरण विरोधी हमारे पूरे सिस्टम निर्णय के अंदर देख रहे हैं। वह समीकरण वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको यह खतरा आज से ही नजर आने लगा है कि अब उनका जो वोट बैंक जो जाति के आधार पर वोटों का गणित देख रहे थे वह उनका गड़बड़ा गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक गरीब के परिवार में, किसान के परिवार में, और एक कह लीजिए संवैधानिक व्यवस्था में जाति के आधार पर अगर देखते हैं लोग तो मैं पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हूँ, इसलिए उसको इस रूप में वो लोग गिनते हैं। बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। और
जी मौर्य जी, एक चीज़ और, जो आपका हम देख रहे थे शपथ पत्र आपने जो लोकसभा के चुनाव में दिया हुआ है उसमें आपके खिलाफ 10 केसेस हैं जिसमें कई गंभीर केसेस हैं, 302 के केस हैं, कुछ ऐसे और केसेस हैं, इस तरह के केसेस को लेकर के क्या जब आप जनता के सामने जाएंगे, आपके नेतृत्व में पार्टी जाएगी, तो इससे नुकसान नहीं होगा या फिर कैसा इंप्रेशन जाएगा?
नहीं नहीं, देखिए जो मुकदमे आप देख रहे हैं ना, वो सब आंदोलन के मुकदमे। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे, एक्सपायर किया था, उस समय मैं इलाहाबाद में रहता था। तो इलाहाबाद बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए और मेरे खिलाफ मुकदमा लिख करके तरीके से जेल भेजने की एक थानेदार ने और एक मिनिस्टर ने उसमें साजिश की थी। उस मुकदमे का निर्णय हो चुका, उसमें बागजूद गरीब, ठीक है। दूसरा, जितने बाकी मुकदमे आप देख रहे हैं वो सारे मुकदमे आंदोलन के हैं, और आंदोलन जनता के हित में करना, नौजवानों के हित में करना, किसानों के हित में करना, सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। मैं अभी बहुत सारे संघर्ष करूंगा, आप सभी उसके साक्षी रहेंगे, हो सकता है और मुकदमे लिखे जाएं।
मौर्य जी, आप तो खैर कह रहे हैं कि सबको लेकर के चलेंगे, लेकिन जिस तरह से बहुत गुटबाजी के शिकार आपकी पार्टी भी रही है, क्या अब ऐसा नहीं लगता कि एक गुट और तैयार हो रहा है या हो गया है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे आप सब मीडिया के साथियों के कारण से ऐसा लग रहा है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी।
और अब चर्चा तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा की। दलाई लामा का कहना है कि दुनिया में बढ़ती हिंसा से लड़ने के लिए दुनिया के बड़े देशों को यूरोपीय संघ की तर्ज पर संगठित होना होगा। बीबीसी के साथ खास बातचीत में दलाई लामा ने कहा कि अगर चीन और भारत जैसे देश एक साथ आते हैं तो ये दुनिया के लिए अच्छा होगा। बीबीसी संवाददाता रविंदर बावा की रिपोर्ट।
तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने बीबीसी से खास बातचीत में भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधारों की बात कही। दलाई लामा का कहना था कि अगर ये दोनों देश एक हो जाते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा।
Eventually, China, India,
अगर भारत और चीन एक साथ आते हैं तो ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी सोच वास्तविकता के करीब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि दुनिया भर के देश अगर मिल जाएं तो ये बेहतर रहेगा।
इस बीच दुनिया में जिस तरह से धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, उसे रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। उनका कहना था कि सभी धर्मों को एक साथ आना होगा ताकि पूरे विश्व में शांति कायम हो सके।
धर्म के आधार पर हो रही हिंसा को कम करने के लिए ये जरूरी है कि सभी धर्मों के लोगों के बीच तालमेल हो। मेरी प्रतिबद्धता है कि धर्म के बीच सद्भाव बने और ये एक दूसरे के धर्म के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखने से ही हो सकता है।
जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि उनके जाने के बाद कौन उनकी जगह लेगा, तो उनका कहना था कि धार्मिक गुरुओं के चुनाव में एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाना चाहिए।
Now today, democratic system, democracy. I myself fully committed about democracy. Therefore, this.
मैं लोकतांत्रिक तरीकों का समर्थन करता हूँ। धार्मिक संस्थाओं में भी हमें ये तय करना होगा कि वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करें। पुराने पड़ चुके तरीकों को बदलने की जरूरत है। हमें नए दौर के साथ चलने की जरूरत है।
दलाई लामा इन दिनों दिल्ली में हैं और यहाँ कई राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात करेंगे।
और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री जे जयललिता आज से अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर रही हैं। आईपीएल के 9वें संस्करण का पहला मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। हालांकि इस दौरान पानी मुहैया कराने को लेकर विवाद हो गया है। जल संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने कहा है कि वो पिचों के रखरखाव के लिए पानी मुहैया नहीं करा सकती। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 9 से 12 अप्रैल तक ईरान और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे और ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन आज अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पनामा पेपर्स लीक्स में अपने पिता का नाम आने पर कैमरन को खासी आलोचना झेलनी पड़ रही है।
और अब समय है विशेष रिपोर्ट का और चर्चा करते हैं असम के चुनाव की। लोअर असम में अवैध घुसपैठ एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये कहा जाता रहा है कि बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हो रही घुसपैठ की वजह से इस इलाके के बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अवैध तरीके से रहते आ रहे हैं। असमिया लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। हालांकि यहां रहने वाले कई ऐसे बंगाली मुसलमान हैं जिनका कहना है कि वो कई पुश्तों से यहां रहते आ रहे हैं। बीबीसी संवाददाता सलमान राबी की रिपोर्ट।
लोअर असम में विधानसभा का चुनाव ऊपरी असम से जरा हटकर है। 61 सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए एक तरह से चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। मगर इस चुनावी कवायद के बीच कई ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से इसलिए हटा दिए गए हैं क्योंकि इनकी नागरिकता पर शक है। प्रशासन को शक है कि ये वो लोग हैं जो अवैध तरीके से बांग्लादेश से यहाँ आकर रह रहे हैं। ऐसे वोटरों को डाउटफुल वोटर की सूची में डाला गया है। इनमें से एक हैं आमिर खान।
उन लोग का बाप का, माँ का, भाई का और सब देशी है ना, सब का फूटा रहा है।
तो आप लोग बांग्लादेशी हैं क्या?
हम लोग बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी डी वोटर होने से तो वोटर लिस्ट में डी बोल के तो लिखा हुआ होगा, लेकिन उसमें तो डी वोटर नहीं है।
अभी आप पता किए क्या केस है? कोर्ट में गए?
कोर्ट में गया।
तो कोर्ट में क्या बोलते लोग?
कोर्ट में तो बोलता है अभी हाजिर नहीं हुआ।
इसमें ज्यादातर लोग बंगला भाषी हैं, चाहे बंगाली हिंदू हों या मुसलमान। मगर कई ऐसे लोग भी हैं जिनका आरोप है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि परिवार के सब लोगों के नाम अगर मौजूद भी हैं तो किसी एक सदस्य का नाम डी वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है। अब लोअर असम के ऐनुल हक को ले लीजिए।
मेरा साल हो गया अभी 35, तो अब जो दादाजी था, बाप गुजर गई, सब कुछ तो गुजर ही गई है, पर तो अगर जो है तो बचपन से यहीं पर रहते हैं, हमारा दादा बाप जितना मेरा पूरा खानदान यहीं पर रहती है।
तो डी वोटर का मतलब ये होता है कि जिसका नेशनलिटी जो भारतीय नहीं है उसका हटा देंगे।
हाँ हाँ।
तो आपके बाकी लोग का, आप लोग सब के लिस्ट में नाम है?
नाम है सबकी।
सिर्फ माँ का नहीं, नाम क्या है माँ का?
माँ का नाम है मानिक जान।
आप लोग बांग्लादेशी हैं क्या?
नहीं, हम लोग बांग्लादेशी के, इंडियन हैं हम लोग, असम के रहने वाले हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता हिलालुद्दीन बताते हैं कि जिन लोगों ने 1966 में वोट डाले थे आज उनके नाम भी हटा दिए गए हैं। क्या लिखा है इन्होंने?
यह वोटर लिस्ट है।
हाँ, इसमें नाम नहीं है।
इसका भी नाम है।
फिर क्या प्रॉब्लम है?
66 का है और 66 का बाद में जो वोटर लिस्ट आया है 6-7 साल हुआ वोटर लिस्ट दिया है। अभी 66 से बाद में तो वोट दिया था 70-71।
बार पेटा के मोतियुर रहमान की विडंबना है कि उनके पिता, पत्नी और बच्चों के नाम तो वोटर लिस्ट में हैं, मगर उनका नाम हटा दिया गया है। ये बावजूद इसके है जबकि उनका नाम नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मौजूद है।
बाबा रसे, माँ रसे, भाई रसे, सेले रसे, अमन नहीं, अमन दादी।
एनआरसी
आचे?
70।
70।
असमिया लोगों के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के भृगुदेव असमिया का कहना है कि घुसपैठ लोअर असम की सबसे बड़ी समस्या है।
आप देख लीजिए, पॉलिटिकल लॉस, फिनेंशियली लॉस, इकोनॉमिकली लॉस।
पॉलिटिकल लॉस क्या?
पॉलिटिकल लॉस क्या? आप जो माइग्रेंट वाला आ रहा है मतलब क्या है, वो लोग वोटर लिस्ट में उसका वोट आ गया तो क्या है उससे? हम लोगों का जो खिलंजा आदमी है उसका तो वोट कम हो गया, इधर माइग्रेंट वाला का वोट ज़्यादा हो गया। इसलिए जो लॉयर असम में है उसका लोकेलिटी का या खिलंजा आदमी का उसका अस्तित्व नहीं रह रहा है।
वहीं इसी संगठन के अंचल दास कहते हैं कि 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वालों को वापस जाना ही होगा।
1971 मार्च के आगे जो यहाँ पर लोग आए थे बाहर से, वो पाकिस्तान से, वो हम लोग एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो आ रहा है उनको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये हम लोग का एक मेन इशू है।
अंचल दास का ये भी कहना है कि घुसपैठ की वजह से लोअर असम में मुसलमानों की आबादी काफ़ी बढ़ गई है।
1991 तक जो मुस्लिम कम्युनिटी है हम लोग का, उनका परसेंटेज 77% पर इंक्रीज हो गया। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा सर ने बताया। असम में जो माइग्रेशन हो रहा है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा माइग्रेशन वाला इलाका है।
घुसपैठ लोअर असम का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जिस पर राजनीतिक दल मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि रोज की उठापटक के बजाय पूरे असम में रहने वालों का सर्वे कराया जाए जिससे ये साफ हो जाएगा कि कौन यहां का रहने वाला है और कौन अवैध रूप से रह रहा है। सलमान रावी, BBC, लोअर असम।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, अशोक कुमार के साथ। जी अशोक।
जी पंकज जी, आज जिस खबर को सभी अखबारों ने प्राथमिकता दी है वो है महाराष्ट्र के शनि शिगणापुर मंदिर में महिलाओं ने जाकर जिस तरह पूजा की वो सब अखबारों में खबर है। इसके लिए भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं ने जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी उस पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, महिलाओं ने मंदिर की जंग जीती। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तस्वीर के साथ लिखा है 400 ईयर्स ट्रेडिशन एंड्स एट शनि शिगणापुर टेम्पल, यानी शनि शिगणापुर मंदिर में 400 साल पुरानी परंपरा खत्म हुई। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है एन इक्वल वर्शिप नाउ, यानी अब बराबरी की पूजा। दैनिक भास्कर ने सुर्खी लगाई है, महिलाओं ने 4 महीनों में 400 साल पुरानी सोच बदल डाली।
और कई मंदिरों में अभी भी ऐसे हालात हैं जिस
शायद
लग रहा है कि
शायद अब और मांग उठेगी।
आएगी
दूसरी खबरों की तरफ रुख करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति पर नभा टाइम्स लिखता है बीजेपी ने चला जाति कार्ड। अखबार कहता है कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े समुदाय से संबंध रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य लाए गए हैं, तो कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को साधने के लिए BS येदियुरप्पा पर फिर से दाव लगाया गया है। वहीं पंजाब में विजय सांपला के जरिए दलितों को लुभाने की कोशिश की गई है। बात पायनियर की करें तो लिखता है नीतीश लाइकली टू बी मेड JDU चीफ टुमारो, यानी कल नीतीश कुमार को JDU का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि शरद यादव जो अभी अध्यक्ष हैं वो अब अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, इसलिए दिल्ली
लड़ने से मना कर दिया
जी। तो दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक है कल, उसमें नीतीश कुमार बन सकते हैं, अखबार कहता है।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार आपका। और अब समय है फिल्म समीक्षा के। कल रिलीज हुई दो फिल्में जंगल बुक और लव गेम्स कैसी रहेगी बॉक्स ऑफिस पर, बता रहे हैं फिल्म समीक्षक अर्णव बनर्जी, उनसे बात की है इंदु पांडे ने।
इस हफ्ते हम लेकर के आए हैं दो फिल्में, एक तो है जंगल के ऊपर यानी कि मोगली की फिल्म और दूसरी है लव गेम्स। हमारे साथ है अर्णव जो बताएंगे पहले कौन सी फिल्म ले रहे हैं। अर्णव आप
पहले मैं बताऊंगा जंगल बुक के बारे में। जंगल बुक हम सब उससे वाकिफ हैं, मोगली की कहानी तो जैसे लगता है कि हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, तो वो ऐसी फिल्म है जो लगता है कि जैसे हमारी पर्सनल एक बचपन की कहानी है।
तो ये कहानी बचपन की कहानी से कितनी अलग है?
बिल्कुल वैसी ही कहानी है। मोगली यहाँ पर जिसको कि एक वुल्व्स की फैमिली ने पाला है, और वहाँ का जो शेर खान है यानी जो राजा है जंगल का शेर, उसको वो पसंद नहीं है और वो चाहता है किसी तरह की मैन कब कहता है उसको, यानी तुम आदमी के बच्चे हो तो तुम यहाँ, तुम्हारा क्या काम जंगल में, तुम नहीं रहोगे। लेकिन मोगली की इतनी दोस्ती है, चाहे वो हाथी से हो, चाहे वो गेंडे से हो, चाहे भालू से हो, बंदरों से हो, और वो इतना सबका दिल लुभाता है कि उसको सब बहुत प्यार करते हैं, यानी हर एक जना उसकी मदद करना चाहता है सिवाय शेर के। तो शेर और मोगली की कहानी है जो हमने पढ़ी भी है। पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही ह्यूमन कैरेक्टर है जो मोगली, बाकी सब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से बनाई है, इतनी ज़बरदस्त फोटोग्राफी है और 3D फिल्म है, इसलिए इतना मज़ा आता है। मुझे हमेशा लगता है कि एनिमेशन बनती तो बच्चों के लिए है, लेकिन कई एनिमेशन ऐसी होती है जो हम बड़े भी बहुत इन्जॉय करते हैं। जंगल बुक उस तरह की एक फिल्म है। मैं जंगल बुक को 5 में से 4 दूंगा।
और अब चलते हैं एक ऐसे खेल की तरफ जो खतरनाक हो सकता है, नाम है उसका
लव गेम्स। लव गेम्स टिपिकल एक विक्रम भट्ट की फिल्म है, यानी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट। विक्रम भट्ट ऐसा तो चाहते हैं, जैसा कि मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर मुझे एडल्ट फिल्म देखनी है तो मैं एक एडल्ट फिल्म की तरह ही उसको ट्रीट करूँगा, यानी उस मुझे कुछ बचकाना ना लगे उसमें। लव गेम्स कहीं ना कहीं एक बचकानी कहानी बन के रह जाती है। तो विक्रम भट्ट जैसा कि चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्ट्री रहे, एक इरोटिक थ्रिलर बनी रहे, कहीं ना कहीं हर स्टेप पे कुछ मंच बना रहे, तो उस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट को लिखने की कोशिश की है। लेकिन कुल मिला के ऐसा लगता नहीं है कि विक्रम भट्ट एक एडल्ट ऑडियंस के लिए कोई फिल्म बना रहे हैं।
ओहो, तो इसको नंबर कितने देंगे आप?
मैं लव गेम्स को 5 में से 1 दूंगा।
और अब समय है प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। श्रीनगर के NIT संस्थान में कश्मीरी और गैर कश्मीरी छात्रों के बीच हुई हिंसा के 9 दिन बाद भी तनाव लगातार जारी है। कल फिर गैर कश्मीरी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कक्षाओं का बहिष्कार किया। पिछले साल नवंबर में हुए पेरिस हमले के बाकी बचे एक अहम संदिग्ध को ब्रसेल्स में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए डिजाइन किए गए एक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो अमरीका पर परमाणु हमला करने की क्षमता को सुनिश्चित करेगा। और सऊदी अरब का कहना है कि वो लाल सागर पर मिस्र तक एक पुल के निर्माण की योजना बना रहा है जिस पर अनुमानित $4 अरब तक खर्च आने की संभावना है। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं खत्म होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। अब से ठीक एक घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।